మనోజవం మారుతుల్యవేగం జీతేంద్రియం బుద్ధిమత్తాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానర్యూత ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే నాస్తి గంగా సమం తీర్థం నాస్తి మాత్రో సమో గురుః నాస్తి విష్ణు సమో దేవో నాస్తి రామాయణ పరం. सभी उपस्थित भक्तजनों का एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं. तो गए सत्र में हमने रामायण के बारे में कुछ चर्चा शुरू की थी और उसे पूरा नहीं कर पाए थे समय के वजह से, तो थोड़ा सा हम उसको रिपीट करेंगे. और क्योंकि आज हनुमान जयंती है तो हमने सोचा कि मुख्य रूप से हम हनुमान जी के लीला के बारे में, उनके गुण के बारे में थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे. तो ये श्लोक है, मैं आपको बोल के बताता हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है. राम रक्षा स्तोत्र में ये आता है. भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम. भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम. गर्जनम का क्या मतलब होता है? गर्जना करना. और गर्जना कौन करता है? सिंह, शेर जो है वो गर्जना करता है. तो कहते हैं कि ये गर्जना है, लेकिन कैसी गर्जना है? यह है राम रामेति गर्जनम. ये राम और रामेति इसका गर्जन है. तो राम मतलब आप जानते हैं भगवान श्री राम, उनका नाम. और रामेति का मतलब होता है कि उनसे जुड़ा हुआ हर कोई, जो भी उनके साथ में, जैसे कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान की लीला, इन सबको रामेति बोलते हैं. तो राम रामेति गर्जनम, हम लोग राम रामेति गर्जना करने की कोशिश कर रहे हैं. और इस गर्जना करने से क्या होता है, कोई भी भगवान राम का नाम लेता है या भगवान राम की लीला कहता सुनता है तो उससे क्या होता है, ये तीन चीजें होती है, तीन इफेक्ट होते हैं उसके. तो पहला है भर्जनम भव बीजानाम. तो भव बीज, भव का मतलब होता है ये मृत्यु संसार, इसको भव 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 सागर बोलते हैं ना, भव रोग भव सागर. तो ये जो भव सागर है हमारा, इसके अंदर हम लोग जो फंस गए हैं, यहाँ पर जो आए हैं, तो इस भव सागर का जो बीज है उसका क्या होता है, भर्जनम, मतलब वो नष्ट हो जाता है. राम का नाम लेने से क्या होता है कि हमारा जो भव बीज है वो नष्ट हो जाता है. अर्जनम सुख संपदा, और अर्जन मतलब हम प्राप्त करते हैं. क्या प्राप्त करते हैं? सुख और संपदा. तो ये भौतिक सुख संपदा की बात हम नहीं कर रहे हैं कि जो भगवान का नाम लेता है उसको आध्यात्मिक सुख और आध्यात्मिक संपदा प्राप्त होती है. तो ये दूसरा उसका महत्व है. और तीसरा है तर्जनम यमदूता नाम, कि उसके पास कभी यमदूत नहीं आते, यमदूत बहुत दूर चले जाते हैं. तो कोई भी व्यक्ति, यमराज स्वयं अपने दूतों को कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसने तिलक धारण किया है और कंठी माला पहना है और भगवान का नाम लेता है, उसे मेरे पास मत लेके आना. तो ये श्रीमद् भागवतम में जो अजामिल का प्रसंग आता है, उस अजामिल के प्रसंग में जब अजामिल ना चाहते हुए भी अपने पुत्र नारायण का नाम लेता है तो विष्णु दूत आ जाते हैं उसको बचाने के लिए और यमदूतों को पीछे हटा देते. तर्जनम यमदूता नाम, उसको पीछे हटा के तो जब यमदूत पीछे हट जाते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है और उनको लगता है जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम किसी को लेने के लिए गए और ले नहीं पाए। तो अपने मालिक यमराज के पास जाके पूछते हैं, और यमराज कौन है? भगवान के बहुत बड़े भक्त है, वो महाजन है ना, 12 महाजन है हमारे, आप जानते हैं। उस 12 महाजन में से एक महाजन यमराज है। तो यमराज उनको कहता है कि जो भी भगवान का भक्त है उसको तुम कभी तकलीफ मत देना और उसको मेरे पास मत लेके आना। मेरे पास ऐसे लोगों को लेके आना जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, जो भगवत प्रसाद नहीं खाते हैं, ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आना। और उस समय वो कहते हैं कि धर्म क्या है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि मालिक बताओ धर्म क्या है। उनको तो लगा धर्म यह है कि जो पतित है उसको लेके आना है। तो उन्होंने कहा धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो भगवान ने बता दिया वही धर्म है। और भगवान क्या कहते हैं, मन मना भवन भक्तो मध्याजी मां मनोस्करो, कोई भी अगर भगवान का भक्त बनता है तो भगवान के धाम में जाना गारंटीड है। और हर जो कोई भी महाप्रभु के इस मूवमेंट में आ गया है, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का और वरांग महाप्रभु का भक्त है, उसका भगवत धाम जाना अनिवार्य है, खुद आके और वो लेके जाएंगे। तो ये राम नाम की महिमा है। कोई अगर राम का नाम लेता है तो क्या होता है, आप सब जानते हैं वाल्मीकि जो कि पहले टापू थे और उनको भगवान का नाम लेना भी नहीं आ रहा था क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी थी। तो राम बोलिए मेरे पीछे, राम,
राम।
हम कितने आसानी से बोले थे, लेकिन उनसे बोला नहीं जा रहा था। जब वो रत्नाकर के रूप में थे तो नारद मुनि ने उनको क्या कहा, उनको कहा राम नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, मरा बोलो, मरा, क्या बोलो,
मरा।
तो एक साथ अगर हम बार बार बोलेंगे मरा 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 तो वो राम राम बन जाता है। तो राम का नाम जैसे भी लिया जाए, भागवत बताता है सांकेत्यम पारिहास्यम खेलम वा, कि अगर वो संकेत लेते हुए भी भगवान का नाम लेता है या मजाक उड़ाते हुए भी भगवान का नाम लेता है या किसी को डांटते हुए भी भगवान का नाम लेता है तो भी उसको भगवान अपने पास बुला लेते हैं। जैसे आपको एक किस्सा बताता हूँ, ये शायद नरसिंह पुराण में आता है कि एक यवन व्यक्ति जंगल में से जा रहा होता है और एक जंगली सुअर आता है उसके सामने और वो सुअर उसको मार देता है। तो जब उसको मार देता है तो बहुत जोर से चिल्लाता है हराम हराम हराम, और हराम में क्या है, तो भगवान वो सोचते हैं कि इसने मेरा नाम लिया है तो हराम बोल रहे हैं लेकिन राम का नाम समझ में आता है। वैसे हमारे पास एक और चीज है दिराम दिराम दिराम, दिराम में क्या है राम का नाम है, लेकिन बहुत ज्यादा दिराम दिराम पे करेगा तो राम से थोड़ा विमुख हो जाएगा। लेकिन जो भी हम कमाते हैं भगवान की सेवा में उसको यूज करना चाहिए। तो आप सब जानते हैं कि देखो जैसे हम लोग पिक्चरें देखते हैं, आज मैं सुबह बता रहा था, तो कई बार कई लोग हैं जो पिक्चर देखने के लिए जाते हैं क्योंकि कुछ आनंद मिलता है। जैसे हमारे में और पशुओं में क्या फर्क है कि पशु जो है उनको देह का आनंद, उसमें वो लोग खुश रहते हैं, उसके ऊपर उनके लिए आनंद नहीं है, उनके लिए देह का आनंद है। लेकिन मनुष्य केवल देह के आनंद से शांत नहीं रहता, जब देह का आनंद पूरा हो जाता है, जब उसकी भूख मिट जाती है तो फिर उसको क्या होता है, क्रिकेट खेलने का मन करता है, पिक्चर देखने का मन करता है। तो पिक्चर देखने क्यों जाता है, कोई व्यक्ति पिक्चर में क्या देखना चाहता है, क्यों पिक्चर फेमस है, तो सबसे पहले पिक्चर देखने के लिए क्या चीज का, कौन सा पिक्चर अच्छा लगता है लोगों को, रोमांटिक, रोमांस जिसमें है, हीरो हीरोइन है ना, हर पिक्चर में हीरो हीरोइन होता है तो वो पिक्चर देखने जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बहुत ऊंचे लेवल का रोमांस दिया है, सोचो भगवान कृष्ण से ज्यादा रोमांटिक आदमी कौन हो सकता है क्या नहीं, कौन है, किसकी 16,108 गर्लफ्रेंड और पत्नियां है, अनलिमिटेड गर्लफ्रेंड कितना होगा। एक बार कोई प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, बोला प्रभुपाद जी भगवान ने 16,108 पत्नियां थी उनकी, तो क्या हमारी एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो प्रभुपाद ने कहा कि वो जो एक है ना वो भी तुम्हारा चोरी किया हुआ है वो भी भगवान की एक्चुअली। और कई बार कई लोगों को तो ये प्रॉब्लम होता है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं कि कृष्णा की 16,108 रानियां है, उनकी एक भी नहीं होती, इसके लिए प्रॉब्लम होता है उनको। तो सबसे रोमांटिक। फिर लोग दूसरा क्या देखते हैं, एक्शन,
है ना, पिक्चर देखने जाते हैं तो क्या चाहिए, एक्शन मूवी। एक्शन मूवी बहुत फेमस है, जहाँ पे बहुत हीरो अपना बहुत एक्शन दिखाता है। तो अगर किसी को एक्शन देखना है तो हमारी कौन सी लीला देखना चाहिए, कौन सा फेमस है एक्शन के लिए बताओ, बोलो। नरसिम्हदेव और हिरण्यकशिपु का और हिरण्याक्ष का और इनका वराहदेव का फाइट देखना चाहिए। हाँ, या फिर महाभारत के अंदर ही कितना एक्शन है, लड़ाई हो रही है, कोई किसी का काट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब हो रहा है उसके अंदर। फिर कोई बोलते नहीं नहीं ये सब ठीक है, हमको इमोशंस, इमोशनल मूवी बहुत पसंद है मेरे को, इमोशंस। तो रामायण इज फुल ऑफ इमोशंस, पूरा करुण रस है रामायण के अंदर, इससे बड़ा इमोशंस क्या देखने मिलेगा। फिर कोई बोलता है कि नहीं हमको हॉरर पिक्चर अच्छा लगता है, हॉरर। तो हॉरर कहाँ पे हमारे शास्त्रों में है, किसको मालूम है? श्रीमद् भागवतम का अगर आप पांचवा स्कंद पढ़ोगे तो उसमें 24 नरकों का वर्णन है, बहुत हॉरर है उसके अंदर, बहुत डरावना है। वो सुन के परीक्षित महाराज घबरा गए थे, बोले अरे बाप रे, इतना कुछ दुख उठाना पड़ता है नरक के अंदर, इतना हॉरर। फिर कोई सोचता है ये सब ठीक है प्रभु जी, लेकिन हमको तो खाली और एक क्या चीज है जिसके लिए लोग पिक्चर देखने जाते हैं, क्या मिस कर रहे हैं हम लोग, कॉमेडी है ना। तो हमको कॉमेडी पसंद है, मेन स्ट्रीम हीरो भी कॉमेडी में लग जाता है। तो हमारे शास्त्रों में बहुत जगह कॉमेडी का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। और क्योंकि हम रामायण और हनुमान जी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको उसमें से एग्जाम्पल बताता हूँ कि राम की सेना में बहुत सारे वानर थे, अनगिनत वानर थे जिनको भगवान रामचंद्र जी जिनको मैनेज करते थे। और वो वानर कोई ऐसा ट्रेंड वानर नहीं थे कि जिनको कोई मिलिट्री का ट्रेनिंग मिला था, ऐसा कुछ नहीं। सारे के सारे युद्ध में आ गए थे और ना कोई अस्त्र शस्त्र था उनके पास में। तो रावण की सेना के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन ये वानरों के पास में कुछ नहीं था। तो क्या करते थे, पत्थर उठा के फेंकते थे, वृक्ष उठा के फेंकते थे, जो उनके हाथ में आया उनसे मारा मारी करते थे और इस तरह से लड़ाई करते थे भगवान के लिए। और भगवान के लिए लड़ाई करते करते उन्होंने इतना त्याग किया कि भगवान रामचंद्र जी खुद द्रवित हो गए। और भगवान रामचंद्र जी जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो बंदरों के साथ में मित्रता उन्होंने की। तो आप सोचो कि एक व्यक्ति जिनके पैरों में बड़े बड़े देवी देवता लोग अपना ज्वाजल्यमान मुकुट उठा के रखते थे, वो क्या कर रहे, बंदरों के साथ घूम रहे। इसके लिए भागवत में वो उद्गार व्यक्त करते हैं, किं चित्रम अच्युत तथैव शेष बंधो दाशेषु अनन्य शरणेषु यदात्म सत्वम यो रोचयत सह मृगाय स्वयं ईश्वराणाम श्रीमत किरीटकट पीड़ित पाद पीठ। के मतलब उनके पैरों के अंदर लोग अपना ज्वाजल्यमान मुकुट लाके रखते थे, भ्रुकुटी ऊपर कर ले भगवान राम, तो देवता लोग अपनी धोती में थर्राते थे, वो भगवान राम क्या कर रहे, बंदरों के साथ घूम रहे हैं। सोचो इस समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई ऐसा करेगा क्या? समझो कोई बड़ा मीटिंग में जा रहा है एमिरेट्स पैलेस के अंदर, कोई एक बड़ा शेख मीटिंग में जा रहा है और मीटिंग में जाते जाते एक बंदर का हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, ऐसा कोई करेगा क्या? कोई बंदरों के साथ घूमता है क्या? नहीं, कोई रद्द कर देगा, कैंसल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा, बोलेगा अरे एक पागल आदमी है। और आप पूछो उससे कौन है, तो बोलेगा ये मेरा एसोसिएट है, मेरे को कंसल्टेंसी देगा। ऐसा कोई नहीं करता है कोई बंदरों का, लेकिन भगवान रामचंद्र जी बंदरों की कंसल्टेंसी ले रहे हैं। सुग्रीव को पूछ रहे सीता को कैसे ढूंढे, अंगद से पूछ रहे, जामवान से पूछ रहे, हनुमान से पूछ रहे, और उनके साथ इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। तो सोचो भगवान रामचंद्र जी किस प्रकार, तो ये बंदर भगवान के लिए बहुत उन्होंने त्याग किया था। और जब युद्ध करते थे तो दिन में युद्ध करते थे, रात को बैठ के डिस्कशन करते थे। तो एकदम दुबला पतला सा सींक जैसा एक बंदर था, फूंक मारा तो उड़ जावे, लेकिन बहुत डिंगे मारता था वो। और दूसरे अपने दोस्तों को बोलता था कि मैंने आज ऐसा युद्ध किया, आज ऐसा युद्ध किया, ये किया वो किया। तो एक दिन तो उसने हद कर दी, वो रात को बैठा था और अपने दोस्तों को बताता है कि आज पता है क्या हुआ, बोला क्या हुआ, बोला आज मैं युद्ध के मैदान में गया तो मेरे सामने बिल्कुल एक रावण का मुष्कंडा मेरे सामने आ गया, 5 फुट का, मतलब मुझसे 5 गुना बड़ा एकदम मेरे सामने आ गया। बोला फिर, बोलता फिर क्या, मैं डरा नहीं, मैंने झट से उसके ऊपर छलांग लगाई और उसके हाथ से तलवार छीन ली। बोला तूने उसके हाथ से तलवार छीन ली, बोला हाँ तलवार छीन ली। बोला फिर क्या, वो तलवार लेके मैंने उसके बाएं हाथ को काट दिया। अरे बाएं हाथ को काट दिया, बोला हाँ, फिर बोला फिर क्या, फिर मैंने तलवार घुमाई और उसके दाएं हाथ को काट दिया, बोला अरे दाएं हाथ को भी काट दिया उसके, बोला हाँ, फिर बोला फिर मैंने उसका दाया पैर उड़ा दिया, फिर मैंने उसका बाया पैर उड़ा दिया, बोला अरे इतना इतना पराक्रम किया तूने आज, बोला हाँ। तो सब लोग बंदर बोल रहे थे अरे क्या बात है क्या बात है, और एक बूढ़ा बंदर था वो बोला अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी ना, सीधा उसका गला उड़ा देता, एक हाथ काटा दूसरा हाथ काटा पैर काटा क्या बात है, सीधा गला उड़ा देना था। तो बोला हाँ वो किसी और ने उड़ा दिया था पहले। समझ में आया आपको? तो सब कुछ है हमारे शास्त्रों के अंदर, करुण रस है, रोमांस है, कॉमेडी है, हॉरर है, एक्शन है, सब कुछ है। तो ये रामायण महाभारत ये हमारे धर्म शास्त्र और व्यवहार शास्त्र है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। भाई का भाई के साथ नहीं जमता है रामायण पढ़िए, पति पत्नी का नहीं जमता है रामायण पढ़िए, दोस्त दोस्त का नहीं जमता है रामायण पढ़िए, कैसे दोस्ती करनी है कैसे निभानी है सब कुछ रामायण में दिया हुआ है। तो हनुमान जी आप सब जानते हैं कि हनुमान जी रामायण के हीरो हैं, है कि नहीं? जैसे मैं आपको लास्ट टाइम जब आया तो बता रहा था कि रामायण में जो कांड है, सबसे पहले बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, तो ये सब जो है तो इन सब में भगवान रामचंद्र जी की लीला बाल कांड में है, अयोध्या में अरण्य में जब वो रहे तभी, तो सुंदर कांड में सुंदर कौन है ना, हमने प्रश्न पूछा था और उत्तर क्या था कि सुंदर कांड में सुंदर हनुमान जी है, क्योंकि हनुमान जी की लीला है इसके लिए हनुमान जी को सुंदर कहा जाता है और उस कांड का नाम सुंदर पड़ा। तो हनुमान की जो माता थी अंजना वो उनको सुंदर नाम से ही बुलाती थी, हनुमान जी बड़े खूबसूरत थे बहुत ही सुंदर थे तो उनका नाम था। तो कई बार हम लोग ये जब पिक्चरें देखते हैं और हमारे सुपर हीरोज होते हैं ना, तो जैसे बैटमैन, स्पाइडरमैन और कौन कौन से मैन होते हैं, ही मैन, ऐसे बहुत सारे मैन है, लेकिन ओरिजिनल सुपरमैन कौन है? हनुमान। तो ओरिजिनल सुपर हीरो हमारे हनुमान है, तो वो हनुमान के बाकी फॉलोवर सब है जो कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्य हनुमान जी ने किए हैं वो कार्य इस सृष्टि में और कोई कर नहीं पाया है। इंडीड कई बार भगवान कृष्ण ने और भगवान राम ने अपने भक्तों का गर्व चूर करने के लिए हनुमान को प्रयोग में लाया है ना। एक छोटी सी आपको कथा बताता हूँ, बाद में हनुमान की स्टोरी आगे बढ़ाएंगे, कि एक बार भगवान के तीन भक्तों को बहुत गर्व हो गया कि हमारे ऐसा तो कोई नहीं, और वो कौन कौन से थे, एक थे गरुड़ जी जिनको लगा कि मुझसे फास्ट तो इस दुनिया में कोई नहीं है, दूसरे थे सुदर्शन जी जिनको लगा कि भगवान मुझे यूज करते हैं, मैं हमेशा भगवान की उंगली पर रहता हूँ, किसी को मारना होता है भगवान सुदर्शन का प्रयोग करते हैं, और गरुड़ को लगा कहीं जाना हो तो मैं मेरे साथ ही भगवान जाते हैं, नहीं तो जाते नहीं है, और तीसरी सत्यभामा उसको लगा कि मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है, भगवान हमेशा मुझसे हमेशा हैंड पैक्ड हस्बैंड है मेरे लिए वो, क्योंकि उसको एक पारिजात का फूल चाहिए था, तो भगवान इंद्रलोक चले गए, इंद्र के साथ झगड़ा करके और पारिजात का वृक्ष उठा के लेके आ गए, तो उसको ऐसा लगा, तो भगवान ने समझ लिया, और भगवान कभी अपने भक्तों का गर्व जो है वो सहन नहीं करते, उसको खंडन करते हैं, तो उन्होंने हनुमान को सोचा यूज करता हूँ उनको मैं, तो फिर उन्होंने गरुड़ को कहा कि जा जरा वो अयोध्या में हनुमान होगा उसको तुम लेके आओ। तो गरुड़ गया स्पीड में उड़ के और हनुमान जी उधर बैठ के क्या कर रहे थे, राम 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 भगवान का नाम ले रहे हैं और इधर उधर बाद में छलांग लगा रहे थे। तो बाद में गरुड़ जी आए, गरुड़ जी बोले हनुमान जी चलो तुमको बुलाया भगवान ने, चलो आ जाओ बैठो मेरे ऊपर मैं लेके जाता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि काम करो थोड़ा भूखा हूँ, थोड़ा मुझे कुछ भोजन वोजन करने दो, आप चलो मैं आता हूँ। तो गरुड़ ने बोला क्या आप चलो मैं आता हूँ, कैसे पहुंचोगे, चलो मैं वेट करता हूँ। हनुमान ने कहा वेट मत करो तुम चलो मैं आता हूँ पीछे पीछे, मैं थोड़ा भोजन करके आता हूँ, भोजन करने में समय लग जाएगा मेरे को। तो गरुड़ ने सोचा अच्छा ये आना नहीं चाहते कोई बात नहीं मैं चले जाता हूँ। तो गरुड़ जी वहां पहुंच गए, तो वहां पहुंचे तो देखिए हनुमान जी ऑलरेडी भगवान के पास में, वो ऐसा एकदम माता ठमका उसका, बोला रे मेरे से तो स्पीड में कोई है नहीं, फेरारी से भी ज्यादा मेरा स्पीड है, और ये फेरारी का स्पीड से हनुमान इधर पहुंच कैसे गया, और हनुमान जी अंदर बैठे हैं उधर भगवान के सामने तो गरुड़ को एकदम लज्जा आ गई, कह रहे मेरे को लग रहा था कि मैं तो गरुड़ का जो गर्भ था वो चूर हो गया। तो उधर गरुड़ ने एक नजारा देखा, क्या नजारा देखा कि हनुमान जी भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, और कृष्ण ने देखा कि हनुमान के गले में, जैसे बंदर लोग होते हैं ना कुछ खाना वाना खा के गले में रख लेते हैं, तो कुछ गले के अंदर कुछ है उसके। तो कृष्ण बोलते अरे हनुमान ये गले में क्या है तुम्हारे, सॉरी प्रभु जी सॉरी, निकाला तो सुदर्शन चक्र था। तो हुआ क्या कि जब हनुमान जी आए द्वारका के अंदर तो सुदर्शन बाहर घूम रहा था, और कृष्ण ने सुदर्शन को कहा था किसी को अंदर मत आने देना, मैं अपने अंतरंग रूप में बैठ के और सत्यभामा के साथ में बात कर रहा हूँ, तो किसी को अलाउ मत करना। तो हनुमान जी जाने लगे तो तुरंत सुदर्शन ने रोका, बोला अरे किधर जा रहे हो, तो बोला प्रभु ने बुलाया है। बोला नहीं नहीं प्रभु बिजी है, तुम बाहर ही खड़े रहो वेट करो। बोला अरे वेट कैसे करूं, मेरे प्रभु ने बुलाया है मुझे पहुंचना है। तो सुदर्शन जाने नहीं दे रहा था, तो चार दरवाजे थे, हनुमान जी ने चारों दरवाजे ट्राई किए द्वारका में घुसने के लिए, और चारों जगह पे सुदर्शन अपनी स्पीड से घूम रहा था। तो हनुमान जी को गुस्सा आया, उन्होंने सुदर्शन को पकड़ा, इधर डाल दिया। सुदर्शन का गर्व चूर हो गया। और फिर जब कृष्ण ने हनुमान से मुलाकात की तो हनुमान ने पूछा कि यस प्रभु क्या आज्ञा है, हाउ कैन आई सर्व यू, बताओ मेरे को। तो बोला कोई बात नहीं, खाली तुम्हारा दर्शन करना था बस, हनुमान बहुत दिन हो गए मिला नहीं इसलिए बुलाया था, जाओ अभी कोई बात नहीं जाओ। तो हनुमान जी जाते लेकिन पीछे मुड़ के वापस बोलते प्रभु अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ मैं आपसे। तो बोले हाँ बोलो हनुमान जी क्या बात है। तो बोले प्रभु ये आपके साथ में दासी कौन बैठी है। तो सत्यभामा का पूरा गर्व चूर हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ में तो केवल सीता जो है वही अच्छी लगती है, वही सुंदर लगती है, बाकी सब तो दासी के तुल्य है। तो तीनों का गर्व चूर करने के लिए हनुमान को यूज किया। तो हनुमान जी बहुत विशेष हैं, और भगवान की जो भक्ति हनुमान जी ने की है वैसी भक्ति और किसी ने नहीं की है। इसके लिए दास्यम का जो एग्जाम्पल है वो हनुमान जी है, जो भगवान के दासों के दास का। तो हनुमान जी की स्टोरी बहुत बहुत ही आकर्षित है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टोरी में नहीं जाऊँगा समय की मर्यादा को देखते हुए, लेकिन हनुमान जी आपको आप जानते हैं वो रुद्र के एक अवतार है, पवन के पुत्र है, केसरी नंदन है, और राम के भी आधे भाई माने जाते हैं वो। तो हनुमान जी का जो बर्थ है बहुत ही एकदम रहस्यमय और मिस्टीरियस है। लेकिन हनुमान जी जब छोटे से बालक थे तो माता अंजना ने एक बार उनको पालने से बाहर रखा और अपना काम करने के लिए गई, तो हनुमान ने जैसे ऊपर देखा तो उसको एक ऊपर पीला लाल कलर का एक फ्रूट दिखाई दिया। तो सोचा अरे लाल कलर का फ्रूट खाऊंगा मैं, खाऊंगा एप्पल के जैसे, उड़ने लगे हवा में। तो वो फ्रूट क्या था, सूर्य था। हनुमान जी भागे 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 और सीधा सूर्य को भक्षण कर लिया। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भय दिया, त्राहे सो त्रास भरी जग को तब डालो, देवन आने करी विनती तब छाड़ी दियो, रवि कष्ट निवारो कौन ही जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम बिहारो। तो बाल समय रवि भक्ष लियो, उन्होंने क्या किया पूरा खा लिया, तो क्या हो गया हाहाकार मच गया, अंधेरा हो गया और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या हो गया। और उस समय सब देवता लोग इंद्र के पास गए, इंद्र उनका राजा था, और बोला कुछ करो। तो इंद्र ऐरावत पे बैठ के गया, सोचा कि ये कौन व्यक्ति है जिसने सूर्य को खा लिया। तो जब हनुमान ने ऐरावत को देखा तो उसको लगा ये अच्छा व्हाइट फ्रूट है, अभी लाल फ्रूट खाया अभी व्हाइट फ्रूट खाऊंगा। तो जैसे खाने गया इंद्र डर गया, और इंद्र ने क्या किया अपने वज्र का प्रहार किया। इंद्र का वज्र बहुत पावरफुल है, और वो वज्र जाके हनुमान के इस डोढ़ी पे लगा, इसको संस्कृत में हनु कहते हैं। तो जाके जैसे उनकी डोढ़ी पे लगा हनुमान जी अचेत गिर गए और उन्होंने उसको तोड़ दिया, इसके लिए उनका नाम पड़ा हनुमान। तो हनुमान जी एकदम नीचे गिरने लगे, तो जब नीचे गिर रहे थे तो उनके पिता पवन देव ने आके उनको उठा लिया और एक गुफा में लेके चले गए, और इतना क्रोध आया पवन देव को कि किसी ने उनके पुत्र पे प्रहार किया, तो उन्होंने सारी वायु जो है वो भूमंडल में से खींच ली। तो ये जब पूरा सौर मंडल में से ये वायु जब आ गई तो सबका सांस रुकने लगा, और सब लोग ने आके त्राही त्राही करके ब्रह्मा जी के पास में प्रार्थना की
तो ब्रह्मा ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम जाके सबसे पहले क्या करो, पवन देव से माफी मांगो और हनुमान जी को बहुत सारा आशीर्वाद दो। तो सब देवता लोगों ने क्या किया, पवन देव से माफी मांगा और हनुमान जी को बहुत सारे उपहार दिए। तो ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दिया, सूर्य देव ने उनको आशीर्वाद दिया कि कभी उनको आग जला नहीं सकेगी, इसलिए जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी तो पूरी लंका जल गई लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। विश्वकर्मा ने उनको ऐसा एक आशीर्वाद दिया कि आप इतने क्रिएटिव हो गए कि आप कोई भी चीज का निर्माण कर पाओगे, और धन्वंतरी ने उनको ऐसा दिया कि आप किसी को छू लोगे तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा, और फिर ब्रह्मा जी ने उनको एक ऐसा एक हार दिया, नौलखा हार डायमंड का, जो इनविजिबल था, दिखाई नहीं देता था, लेकिन हार रहेगा तुम्हारे पास में। और ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति तुम्हारे गले में हार पहचान लेगा वो तुम्हारा मालिक होगा। तो ऑब्वियसली वो कोई नहीं पहचान सका, हनुमान जी अपना मस्ती करते थे और जब इतना पावर आ गया उनके पास में तो सभी आप जानते साधु और जो ऋषि मुनि थे उनके साथ में उल्टा पुल्टा काम करते थे, उनको कभी पानी में डुबा देते थे, कभी निकालते थे। तो ऐसा एक बार एक ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि हे हनुमान, तू जिस शक्ति के ऊपर इतना इतरा रहा है ना, वो सारी शक्ति तेरी चली जाएगी। और फिर जब उनको प्रार्थना की गई तो कहा कि तेरी शक्ति जब जरूरत होगी तब तेरे को याद आएगी, जब कोई याद दिलाएगा तब तक तेरी शक्ति चली जाएगी। तो हनुमान जी एकदम चुपचाप सोबर बालक की तरह सब भूल गए कि उनकी क्या शक्ति है और तुरंत जाने लगे। और बाद में हनुमान जी अपने माता पिता को जाके बोले कि अभी मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो ऊपर कह रहे इतना मतलब उद्दंड बालक था ये हनुमान, पढ़ाई की बात कैसे कर रहा है। तो फिर उसको पढ़ाई के लिए किसके पास भेजा गया, सूर्यदेव के पास। और सूर्य के पास वो पढ़ाई करते थे, लेकिन सूर्य का क्लासरूम कैसा था, सूर्य तो घूमते रहते हैं चौक ना, उनका तो घूमने का ही है, सूर्य का चक्र चलते रहता है। तो हनुमान जी अभी वो चल रहा है कैसे करेंगे, उनके साथ साथ में तो उड़ के कैच नहीं कर पाते थे। तो हनुमान जी ने रिवर्स लिया, तो सूर्य ऐसा आ रहा है और हनुमान जी ऐसे पीछे पीछे उड़ रहे हैं, और पीछे पीछे उड़ते उड़ते और बहुत कम समय के अंदर सारा ज्ञान जो है वो सूर्यदेव से उन्होंने प्राप्त कर लिया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद हनुमान ने सूर्यदेव को कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, पूछो आपको क्या चाहिए। तो सूर्य ने कहा कि मेरा एक पुत्र है, थोड़ा मंदबुद्धि है, उसकी सहायता करना हमेशा, सुग्रीव। तो सुग्रीव मेरा पुत्र है, तो इंद्र का पुत्र था वाली और सूर्य का पुत्र था सुग्रीव। तो बोला सुग्रीव, लेकिन ये दोनों भाई थे, जैसे हनुमान जी पवन पुत्र भी है और केसरी नंदन भी है। तो बोला हमेशा उसकी सहायता करना तू और उसके सचिव के रूप में रहना। तो इसके लिए हनुमान जी ने, तो विद्या कभी भी ऐसे फ्री में ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या किया, सूर्यदेव अपने गुरु का आदेश मान के और उसको फॉलो किया, ऐसा नहीं सोचा ये आदेश सही है नहीं है ये है वो है करके तो उन्होंने हमेशा अपने गुरु का आदेश का पालन किया। और जब सुग्रीव को बाली ने निकाल दिया अपने किष्किंधा से, और वो जाके जब पर्वत पर रहते थे और राम और लक्ष्मण जब आ रहे थे, तो हनुमान जी ने क्या किया, अपना रूप बदल के एक भिक्षुक सन्यासी का रूप लेके, ब्राह्मण का रूप लेके रामचंद्र जी के पास गए। अब देखो इसमें ना हनुमान जी की भी नम्रता थी, क्योंकि सन्यासी में भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज होते हैं। तो रावण ने जब अपना रूप बदला तो कौन सा सन्यासी बन गया, परिव्राजक का चार्य सन्यासी बन गया है, जो हायर लेवल का है, और हनुमान जी भिक्षुक सन्यासी बन गया है। और वो राम का भेद जानना चाहते थे, तो राम के पास आके अलग अलग रूप से राम का भेद जानने की कोशिश कर रहे थे। तो रामचंद्र जी ऑब्वियसली अपने भक्त को पहचानते हैं और भक्त भी अपने भगवान को पहचानता है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि अरे तुम तो भिक्षु हो, सन्यासी हो, तो तुम्हारे गले में ये नवलखा हार क्या कर रहा है। तो हनुमान जी वहीं गिर पड़े, बोले अरे बाप रे बाप, इन्होंने पहचान लिया। तो उनको याद आया ब्रह्मा जी का वचन कि हाँ यही मेरे प्रभु है, और प्रभु चरणों में गिर पड़े। और फिर प्रभु का इंट्रोडक्शन हुआ, ये हुआ वो हुआ सब, और वो सुग्रीव के पास में लेके गए। अभी सुग्रीव जो है उसका ना कोई मित्र नहीं था, वाली ने मार के भगा दिया था, हनुमान जी उसके सचिव थे, अकेला रहता था थोड़े वक्त उसके थे मित्र वगैरह, मतलब उसके साथ में उसके एसोसिएट्स थे, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने उसके साथ मित्रता की। लेकिन जब सुग्रीव की और रामचंद्र जी की जब मुलाकात हुई तो सुग्रीव ने रामचंद्र जी को पहचाना नहीं, हनुमान जी ने पहचान लिया था। तो सुग्रीव ने क्या सोचा कि राम भी अकेले हैं, मैं भी अकेला हूँ, राम की पत्नी को कोई चुरा के लेके गया, मेरी पत्नी को वाली चुरा के लेके चला गया, वो भी सन्यासी की तरह अकेला भटक रहा है और मैं भी भटक रहा हूँ यहाँ पर दर बदर, तो हम दोनों एक समान है। तो जब हनुमान जी जब सुग्रीव के सामने राम आए तो सुग्रीव ने क्या किया, पैर नहीं पड़ा, हाथ मिलाया, हैंडशेक किया। तो हनुमान जी को बड़ा अजीब लगा, लेकिन क्योंकि सूर्यदेव ने कहा था, हनुमान जी कुछ बोले नहीं। फिर सुग्रीव ने रामचंद्र जी को बैठने के लिए एक वृक्ष तोड़ा और उसका आसन बना के और वृक्ष के ऊपर बोला रामचंद्र जी को बैठने के लिए और खुद उनके बाजू में बैठ गया। तो हनुमान जी को बड़ा अजीब लगा अभी भी, लेकिन कुछ बोले नहीं। फिर हनुमान जी ने नोटिस किया कि सुग्रीव ने रामचंद्र जी को तो बैठने के लिए दे दिया लेकिन लक्ष्मण को पूछा नहीं। तो बड़ा एकदम उनका ऐसा लगा कि अरे लक्ष्मण तो आदि गुरु है। तो उन्होंने एक वृक्ष तोड़ा और लक्ष्मण को बिठाने के लिए आसन दिया और खुद जमीन पर बैठ गए। तो भगवान रामचंद्र जी ने अपने नेत्रों से नोटिस किया कि हाँ, यही व्यक्ति है जो मेरा परम भक्त है और हमेशा मेरा परम भक्त रहेगा। सो सेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। एक बार की बात है, रामानुजाचार्य बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हुए हमारे, तो वो एक किसी गांव में जा रहे थे जिस गांव का जमींदार उनका डिसाइपल था, बड़ा भक्त था, मेरे ख्याल से था उसका नाम यज्ञेश था। तो रामानुजाचार्य ने जाने के पहले अपने दो सर्वेंट्स को भेजा वहां पर, बोला जाके यज्ञेश को बोलो कि मैं आ रहा हूँ। तो वो लोग जाके और यज्ञेश को बोले कि अरे गुरु महाराज आ रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग जब सुनते हैं अरे गुरु महाराज आ रहे हैं ऐसा, तो जाके बोला तो यज्ञेश एकदम पागल हो गया, बोला अरे गुरु महाराज आ रहे, गुरु महाराज आ रहे, ये तैयारी करता हूँ, वो तैयारी करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ऐसा पूरी तैयारी करने लगा। और तैयारी करके और फिर वो दो जो उनके सर्वेंट थे वो वापिस आ गए। तो रामानुजाचार्य ने उनसे पूछा कि यज्ञेश को कैसा लगा जब आपने बताया, तो बोला अरे बहुत खुश हो गया गुरुदेव, वो तो इतना खुश हो गया कि पूरा तैयारी कर रहा है आपको वहां पे बुलाने के लिए, सारा अरेंजमेंट कर रहा है। और रामानुजाचार्य ने कहा कि लेकिन तुम्हारे साथ उसने कैसा व्यवहार किया, क्या उसने तुमको पानी दिया, क्या भोजन दिया? तो बोला अरे गुरु महाराज वो इतना बिजी था बेचारा भूल गया। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि अभी मैं उस गाँव में नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम्हारा उसने स्वागत नहीं किया। तो इंग्लिश में भी एक कहावत है, लव मी लव माय डॉग, मुझसे प्रेम करना तो मेरे कुत्ते से पहले प्रेम करो। तो भगवान के जो भक्त है, भगवान अपना कद्र किया नहीं किया देखते नहीं है, लेकिन भगवान के भक्तों का कोई कद्र नहीं करे तो तुरंत देखते हैं, तुरंत नोटिस करते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी हमको क्या लगता है, इससे एक शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसकी हम लोग बड़ी आव भगत करते हैं, आओ बैठो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन कोई छोटा व्यक्ति है उसको लोग भाव नहीं देता है, लेकिन जो व्यक्ति छोटे को भाव देवे वही महान है। इसके लिए रहीमदास जी कहते हैं, वही मन बड़न को देख के लघु ना दीजे टार। तो रहीमदास जी कहते हैं अरे बड़े लोग को देख के छोटे को छोड़ नहीं देना चाहिए, उनको फेंक नहीं देना चाहिए। क्यों ऐसा कहते हो? तो कहते हैं रहीमन बड़न को देख के लघु ना दीजे टार, जहां काम आए सुई का करे तलवार, कि जहां सुई काम आने वाली है वहां पे तलवार भी क्या कर लेंगे। तो इसके लिए कभी भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम बड़ों का अगर सम्मान करते हैं तो छोटों का भी सम्मान करना चाहिए, उसमें हमारी महानता है। तो फिर कहानी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय बीतता जा रहा है। तो आप सब जानते हैं कि जैसे मैं थोड़ा वापिस से हमारा लास्ट क्लास में आता हूँ रामायण की, जैसे हमने जब रामायण की चर्चा कर रहे थे तो हमने क्या डिस्क्राइब किया था कि एक राम है जो आनंद देने वाले हैं और एक रावण है जो दुख देने वाला है, है कि नहीं? और हमारे पास अयोध्या है, वो किसका प्रतीक है? लास्ट टाइम मैंने बताया था अयोध्या किसका प्रतीक है? संस्कृति का प्रतीक है। उसके विपरीत लंका है वो किसका प्रतीक है? विकृति का प्रतीक है कि नहीं? अयोध्या में सब कुछ जो है वो संस्कृति से चलता है और लंका में सब कुछ विकृति से चलता है, क्योंकि लंका जो है वो चुराई हुई नगरी है। रावण ने किससे चुराई थी? कुबेर से, लास्ट टाइम हमने बात की थी। और इन दोनों नगरी के बीच में एक और नगरी है, वो है किष्किंधा। हाँ, तो किष्किंधा किसका प्रतीक है? प्रकृति का। तो प्रकृति का मतलब होता है तटस्थ, मतलब आप समुद्र के किनारे खड़े हो तो आप पानी में भी जा सकते हो और भूमि पे भी जा सकते हो। तो ऐसे लोग होते हैं किष्किंधा के अंदर जो शायद अयोध्या वासी भी बन जाते हैं या कभी कभी लंका वासी भी बन जाते हैं। जैसे हनुमान जी का एग्जाम्पल हमने दिया था कि हनुमान जी इज परफेक्टली अयोध्या वासी, लेकिन वाली परफेक्टली लंका वासी है कि नहीं? तो वाली जो था वो कैसा था? टेम्पटेशन के जैसा। जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल क्या दिया कि उसको एक वर प्राप्त था कि कोई भी उसके सामने आएगा तो आधी शक्ति उसमें आ जाएगी। तो हमने एग्जांपल कौन सा दिया था? रसगुल्ला, याद है आप लोग को? तो रसगुल्ला मतलब जिसको डायबिटीज हुआ है वो उसके सामने अगर सफेद नरम मुलायम रसीला अगर रसगुल्ला आता है तो क्या होता है? उसको ना कहने की क्षमता आधी हो जाती है और रसगुल्ला की शक्ति डबल हो जाती है। क्योंकि नॉर्मल आदमी रसगुल्ला खाएगा तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन डायबिटीज वाला आदमी रसगुल्ला खाएगा तो मर जाएगा, है कि नहीं? तो ये दो व्यक्ति इस प्रकार से है और उसके बीच में सुग्रीव है जो टोटली कंफ्यूज्ड है ना। तो सुग्रीव कभी लंकावासी बनता है, कभी अयोध्यावासी बनता है। जैसे हम लोग है, हम लोग कभी कभी अयोध्यावासी के जैसा बिहेव करते हैं, कभी कभी लंकावासी के जैसा बिहेव करते हैं, है कि नहीं? प्रोग्राम में आते तो अयोध्यावासी बनते हैं, प्रोग्राम के बाहर जाते तो लंकावासी जैसा हो जाता है। तो इस किष्किंधा के अंदर भगवान रामचंद्र जी आए, जब पंचवटी में सीता माता का हरण हो गया तो रावण ने क्या किया था कि धोखे से रावण ने सीता को चुरा लिया था और जगायु का वध करके वो चला गया था। और वो ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते वो किष्किंधा में आए, और किष्किंधा में जब आए तो सुग्रीव से उसकी मुलाकात हुई और सुग्रीव और उन दोनों के बीच में डील हुई कि वो राम वाली को मारेंगे और सुग्रीव उनकी सहायता करेगा। लेकिन चतुर्मास था तो उसमें वो ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो सुग्रीव अपने महल में चला गया और भोग विलास में लिप्त हो गया। 4 महीने तक भोग किया और भोग करने के बाद उसको याद नहीं रहा कि मैंने राम को क्या वचन दिया है, भूल गया। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण जाके और सुग्रीव को जरा रिमाइंड कर और उसको बोल कि जिस वाण से मैंने वाली को परलोक भेजा है वो वाण अभी भी मेरे पुनीर में है, गया नहीं, जाके बता। तो लक्ष्मण तो एंग्री यंग मैन है, वो तो जाके बोलता भैया अभी उसका वध करके आता हूँ, तला रे वध नहीं करना है, खाली उसको इतना डरा कि मेरी शरण में आवे। और मैं आपको बता रहा था लास्ट टाइम कि भय जो है वो जरूरी है हमारे जीवन के अंदर, और उतना ही भय होना चाहिए कि जितने में व्यक्ति भगवान के शरणागत हो सके। ज्यादा भय दिखाएंगे तो भाग जाएंगे, और भय नहीं रहेगा तो कोई भक्ति नहीं करेगा, है कि नहीं? प्रेम के वशीभूत बहुत कम लोग भक्ति करते हैं, तो पहले धीरे 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 भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सुपरलेटिव डिग्री से भी नहीं, क्योंकि जो जितना ज्यादा हाई जंप मारेगा उतना ज्यादा नीचे गिरेगा और चोट लगेगी उसको। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे रूप गोस्वामी जी उन्होंने हमको बताया है कि सबसे पहले क्या है, अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, और अनर्थ निवृत्ति के बाद में सारा जो लेवल है वो आगे बढ़ता रहता है। तो धीरे 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 हमको बढ़ना चाहिए। तो सुग्रीव भूल गया, फिर लक्ष्मण ने जब याद दिलाया तो सुग्रीव वापस राम के पास आया, बोला अच्छा अच्छा अभी हम लोग ढूंढते हैं। तो लोग सीता को ढूंढने के लिए 4 दिशा में 4 टुकड़ी गई, 3 टुकड़ी वापिस आ गई, 4थी जो अंगद के साथ में थी वो वापिस नहीं आई। और फिर वो लोग समुद्र के तट पर पहुंचे और कंफ्यूज बैठे थे, तो संपाति जो जटायु का भाई था वो गिद्ध, उसने बताया कि रावण जो है वो सीता को हर के लेके गया है और मैं देख पा रहा हूँ लंका 100 योजन की दूरी पर लंका है, तो सीता वहां पर है। अभी सीता का पता लग गया, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि 100 योजन की लंका, 100 योजन का समुद्र पार कौन करेगा? तो सब लोग सोच रहे हैं और अंगद सबसे पूछने लगा, लीडर था वो, तो अंगद ने बोला तो एक मंत्र बोला मैं 5 योजन कूद सकता हूँ, दूसरे ने बोला मैं 10, कोई बोला मैं 20, 30, 40, 50, 60 योजन, एक और वानर आगे आया बोला मैं 70 योजन कूद सकता हूँ, लेकिन फायदा क्या, पानी में डूब जाएगा। तो अंगद बोला कि मैं तो 100 योजन कूद सकता हूँ लेकिन रिटर्न नहीं आ सकता, एक ही बार छलांग लगा सकता हूँ मैं। जामवान बोले मैं जब जवान था तो 21 बार पृथ्वी का भ्रमण किया था लेकिन अभी वृद्ध हो गया हूँ, अभी मैं छलांग नहीं लगा सकता। तो क्या करेंगे क्या करेंगे, तब सब सोच रहे थे और हनुमान जी कॉर्नर में खड़े रह के वो भी विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए। तब जामवान जी, उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया, जामवंत के वचन सुनाए और हनुमान जी को जाके याद दिलाया। तो हनुमान जी की जो स्थिति है वो हमारी स्थिति है, हमारे पास में भगवान का प्रेम है लेकिन हम लोग भूल गए हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ तारे माया छपटिया धरे। तो हम लोग भूल चुके हैं, हमको कोई याद दिलाने वाला चाहिए। तो जामवान जी ने क्या किया, गुरु की भूमिका निभाई, एक लीडर की भूमिका निभाई और वो आके और हनुमान जी को आके कहे हैं हनुमान याद करो, तुम्हारे को सारे देवता लोगों ने आशीर्वाद दिया था, ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, चंद्र ने, वायु ने, वरुण ने, विश्वकर्मा ने, सबने तुम्हारे को इतनी सारी शक्ति दी है लेकिन तुम उत्तरदंड बालक थे और उस वजह से तुमको श्राप मिला और सारी शक्ति जो थी वो तुम भूल गए हो, लेकिन अभी भी वो शक्ति तुम्हारे में है, उस शक्ति को याद करो और ये संकट जो हमारे पे आया है इस संकट को पार लगाओ। हा? तो बोलते हैं कि याद करो हनुमान, अपने आप को वापस याद करो और ये जो संकट हमारे पे आया है, कौन ही जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहारो। तो बोले कि कौन भी को आप जानते हो, आप संकट मोचन आपका नाम है, याद करो, याद करो तुम्हारे में क्या शक्ति है, याद करो तुम्हारे में कृष्ण प्रेम है और उस कृष्ण प्रेम को याद करके और भगवान रामचंद्र पे जो संकट आया है इसको पार उतारो और छलांग लगाओ और छलांग लगा के लंका में जाओ और लंका जाओ सिया सुधी लाओ, लंका जाओ सिया सुधी लाओ। और कहते हैं कि जाके और पता लगा क्या है हनुमान। तो जैसे हनुमान को याद दिलाया तो नित्य प्रेम, नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करिए उदय। हमारे हमारे हृदय के अंदर नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम ऑलरेडी है, साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्त, थोड़ा श्रवण करेंगे हम भगवान की कथा का, भगवान के नाम का, तो क्या होगा वो अंदर जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, गांव, आप लोग तो बहुत सारे गांव से, आप हैंडपंप जानते हो, तो कभी कभी हम लोग हैंडपंप जब चलाते हैं तो पानी आता नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग छोटा सा बाल्टी में पानी लेते हैं और हैंडल के ऊपर पानी डालते हैं और फिर हैंडपंप चलाते पानी आ जाता है, है कि नहीं। वो हावड़ वाले लोग भी समझ नहीं पाते कि क्या ये तरीका है, लेकिन वैसे ही कृष्ण प्रेम हमारे अंदर है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं कण रंध्रों के माध्यम से थोड़ा सा हरि कथा अंदर फेंकते हैं। भगवान का नाम जब अंदर जाता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, करके वो पानी बाहर आता है कृष्ण का प्रेम। तो साध्य कबू नाय श्रवण आदि चित्त शुद्ध करिए उदय, तो उदय हो जाता है। जब हनुमान जी को ये सब याद दिलाते हैं तो हनुमान जी को याद आता है और वो जोर से चिल्लाते हैं जय श्री राम, याद आ गया मुझे, बोले एक बार क्या मैं 100 बार इस समुद्र को पार कर सकता हूँ। और वो इधर उधर देखते हैं, लॉन्चिंग पैड खड़ा होते हैं महेंद्र पर्वत पे और बहुत जोर से हनुमान जी जंप मारते हैं, राम नाम के पंख लगा कर हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान, सीधा भगवान का एकदम जंप लगाते हैं और उस समुद्र को पार करने के लिए उड़ते हैं हनुमान जी और ऐसी स्पीड से जाते हैं और उड़ते रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति में लगता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं भी आती है। तो सबसे पहले क्या होता है, हनुमान जी के रास्ते में एक बाधा आती है और वो होता है मैनाक पर्वत। अब उसकी स्टोरी बहुत लंबी है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैनाक पर्वत हनुमान को कहता है कि थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम करो और विश्राम करके फिर आगे जाओ। तो हनुमान जी कहते हैं कि राम काज करने के लिए आया हूँ, विश्राम करने के लिए नहीं। उस मैनाक पर्वत को हाथ लगाते हैं, मतलब उसको आदर देते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी कॉम्प्लेसेंसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कि बहुत सारे ऐसे लेजीनेस आता है, बहुत सारे हमारे को कंफर्ट मिलते हैं और कोई व्यक्ति कंफर्ट में रह गया तो भक्ति में फिर आगे नहीं बढ़ सकता। वो सोचता है चलो इधर ही बैठ जाता हूँ, मैं भी लीडर बन गया, मठाधीश बन गया,
चलो मठ मिल गया मेरे को, इस मठ में मैं राजा बन के बैठता हूँ, नहीं आगे बढ़ना है। तो हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, दूसरी राक्षस उसको मिलती है, कौन सी? सुरसा। और सुरसा के पास एक ऐसा वरदान होता है कि जो कोई भी जाएगा उसके मुंह में उसको जाना पड़ेगा, ब्रह्मा जी का वरदान था। और सुरसा, हनुमान जी सुरसा को बोलते जाने दे भगवान का काम करना है, सुरसा बोली नहीं अपना मुंह खोलती है। तो जितना बड़ा मुंह खोलती है हनुमान जी डबल बन जाते हैं, तो सुरसा 5 योजन का मुंह करती है, हनुमान जी 10 योजन, वो 20 योजन, हनुमान जी 40 योजन, वो 80 योजन करती है। 100 योजन का जब मुंह करती है तो हनुमान जी क्या करते हैं, एकदम छोटे से मच्छर कैसे बनते हैं उसके मुंह में घुसते और बाहर आ जाते हैं, तो बहुत चतुराई से। तो ये सुरसा रिप्रेजेंट्स फॉल्स ईगो, जो हमारा ईगो है ना बहुत बढ़ते जाता है कभी कभी, बहुत इन्फ्लेट होता है, तब क्या करना चाहिए, नम्र बनना चाहिए। तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुः अमानिना मानते न कीर्तनीय सदारी। जो व्यक्ति नम्र बन जाता है वो इसमें से बाहर निकल जाता है, नहीं तो फंस जाता है। तो हनुमान जी को सुरसा आशीर्वाद देती है, बोलती है मेरे को देवताओं ने भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, और तुम बहुत बहुत विवेक पुरुष है वो, और जा तेरे को मेरा आशीर्वाद है, राम का काम सफल होगा। हनुमान फिर उड़ते हैं वहां से और आगे उड़ते हैं, और जैसे ही उड़ते हैं राम नाम के पंख लगाकर हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। जैसे हनुमान जी उड़ते हैं अचानक ब्रेक लगता है, रुक जाते हैं, बोला अरे क्या हो गया, कोई बीच में कैसे। तो होता है कि एक और राक्षसी रहती है जो नीचे रहती है जिसका नाम होता है सिमेका, वो क्या करती है हनुमान की परछाई पकड़ लेती है और परछाई पकड़ के नीचे खींचती है। तो कभी कभी आप जीवन में ऐसे लोगों को देखोगे जो आपकी परछाई पकड़ के आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, कि जब कोई भक्ति में ऊपर उड़ता है तो कई लोगों को एक्चुअली किसी दूसरे भक्तों को भक्ति में आगे बढ़कर देखकर, आगे बढ़ता हुआ देखकर हमारे को खुशी होनी चाहिए। जैसे दामोदर आरती में के यशोदा ने क्या किया, कृष्ण से ज्यादा फास्ट भाग के परामृष्टम अत्यंत तो तृप्त गोपिया, उस गोपी ने कृष्ण को पकड़ लिया और कृष्ण हारने पे खुश हो रहे हैं, है ना। भक्ति का मतलब है पराजय, तो जब पराजय के अंदर हमारे को खुशी मिले तो सोचना चाहिए भक्ति बरोबर चल रही है, नहीं तो कुछ इस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो हमारी परछाई पकड़ के, मतलब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है लेकिन एक खराबी होगी उसके ऊपर लोग फोकस करते हैं, तो वो लोग मक्खी के जैसे होते हैं। क्या होता है, मिराकल गार्डन, इतना अच्छा गार्डन है, करोड़ों करोड़ों फूल है, मक्खी घूमते रहती है लेकिन फूल पे नहीं बैठती है, किधर बैठती है, जिधर विष्ठा होता है, जिधर गु होता है वहां पे जाके बैठती है कि नहीं। और एक मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है, पूरा का पूरा कचरा पेटी है उसमें घूमते रहती है लेकिन एक गुलाब का फूल पड़ा है उसमें, तो जाके उस फूल पे बैठेगी। तो हमारे को मधुमक्खी बनना चाहिए, मक्खी नहीं बनना चाहिए जीवन में। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो पकड़ लेते हैं, उसने हनुमान को पकड़ के और नीचे खींचा और अपने मुंह में डाल दिया, तो ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है, उन लोगों को भगवान फिर फाड़ फूड़ के बाहर निकालते हैं। तो हनुमान ने सिमिका को तोड़ दिया, फोड़ दिया और फाड़ के, और उस कहा कि ये नारी बहुत इस तरह से है, और उसको बाहर निकाल के, और फिर हनुमान उड़ने लगे और उड़ के फाइनली वो लंका में पहुंचे। तो लंका में पहुंचे तो चौथा जो क्या बोलते हैं उसके बीच में चैलेंज, चुनौती उनके सामने आई, और वो थी लंकिनी। तो लंकिनी उनको अंदर प्रवेश करने नहीं दे रही थी, तो हनुमान ने कहा कि अरे जाने दे, भगवान का काम करने के लिए आया हूँ। तो कहा कि नहीं, हमारा सिस्टम ऐसा है कि बिना वीजा के इसमें कोई घुस नहीं सकता, वीजा किधर है तुम्हारा। तो हनुमान ने कहा यार मेरे पास कोई वीजा नहीं है, वो इमिग्रेशन ऑफिसर के जैसी थी। प्रभुपाद जी बोलते हैं लंकिनी इज लाइक इमिग्रेशन ऑफिसर, जैसे कभी कभी मैं किसी देश में जाता हूँ तो लोग बोलते हैं क्यों आए हो, क्या काम है, क्यों आए हो, ऐसा सब करके चिल्लाते रहते हैं, भौंकते रहते हैं वो। तो हनुमान ने कहा कि जाने दे बाबा, भगवान का काम कर रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं जाने मिलेगा तुमको, और जब लड़ाई मतलब ऐसा हो रहा था उसने हनुमान जी को धक्का दिया, बोला भाग इधर से, मेरे देश में आ गया है तू, ना कई बार ऐसा होता है ना, मेरा देश ये ऐसा वैसा करके बोला भागो यहाँ से, तुम्हारा वीजा भी रिन्यू नहीं करेंगे हम लोग। तो लंकिनी ने धक्का दिया, तब हनुमान जी को भी गुस्सा आया और हनुमान जी ने एक झापड़ मारा लंकिनी को, गुलांटी खाती हुई दूर जाके गिरी और खून की उल्टी करने लगी, रिवर्स साइड हनुमान जी के पैर पड़े, बोला माफ कर देना। तो हनुमान ने कहा पहले समझ में नहीं आया क्या। तो लंकिनी रिप्रेजेंट्स प्रीचिंग ऑब्स्टेकल्स, प्रचार के मामले में जो चुनौतियां होती है वो लंकिनी रिप्रेजेंट करती है। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, उस चुनौती को भी हटा के भगवान का राम लेके, और फिर रावण की लंका में प्रवेश किए। हमारे पास बहुत समय नहीं है लेकिन 5-7 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा इसको वाइंड अप करने का।
तो वो लंका में घुसे और सीता को सब जगह ढूंढ रहे, लेकिन सीता कहाँ उनको दिखाई देगी। तो रावण के महल में हर जगह पे देखा, कहीं सीता दिखाई नहीं दी। जब ऊपर से उड़ रहे थे तो देखा कि अचानक नीचे तुलसी का पौधा है। इस प्रकार से तुलसी का पौधा था और राम 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 ऐसा आवाज आ रहा है। तो सोचा रे लंका के अंदर कौन राम का नाम ले रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो लंका में इतना गट्स कि लंका में, लंका के राज्य में ऐसा नाम ले रहा है। तो नीचे उतरे वापिस से छुप के पता लगाने के लिए, तो पता चला कि वो विभीषण है और विभीषण भगवान के बहुत बड़े भक्त है, जो भगवान की वंदना करते रहते हैं, वंदन के आचार्य है वो, और हनुमान जी को उनसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। और विभीषण ने क्या किया था कि अपनी कुटिया के अंदर सब जगह पे राम 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 लिख के रखा था। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला अरे तूने राम का नाम लिख के रखा है, राम की लंका मतलब रावण की लंका में रहता है। तो विभीषण ने कहा कि मैं उसी प्रकार से रहता हूँ जिस प्रकार से दांतों के बीच में जीभ रहती है, कभी दांत उसको काट लेगा समझ में नहीं आता है, तो बहुत कठिन है मेरे लिए, लेकिन भगवान राम की कृपा है। तो एक बार किसी ने जाकर रावण को चुगली किया, बोला कि वो तुम्हारा भाई विभीषण धिक्कार है उस पे, वो तुम्हारे शत्रु राम का नाम लिख के रखा है अपने दीवार के ऊपर। तो राम ने अपने, रावण ने अपनी चंद्रहास खड़ग ले ली और गया विभीषण को मारने के लिए और बोला विभीषण ये क्या है, मेरे शत्रु का नाम लिखता है। तो विभीषण कृष्ण का जो भक्त होता है, राम का भक्त होता है, बड़ा चतुर होता है। तो विभीषण ने कहा कि अरे नहीं नहीं भैया, ये तो मैंने आपका नाम लिखा है। बोला मेरा नाम राम है क्या? तो बोला अरे नहीं नहीं भैया, ये तो मैं तुम्हारी और भाभी की बहुत पूजा करता हूँ, तो मैंने तुम्हारा और भाभी का नाम लिख के रखा है। राम मतलब रावण और मम मतलब मंडोदरी। तो बोला ये तो रावण मंडोदरी, रावण मंडोदरी। तो बोला थोड़ा कम लिखा और ज्यादा लिख, जय श्री राम। तो विभीषण से मिले, विभीषण ने फिर उनको बताया कि सीता अशोक वाटिका में है। तो हनुमान जी एक वृक्ष पे जाके बैठ गए और देखे सीता के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन इमीडिएटली उन्होंने जंप नहीं मारा, उन्होंने क्या किया, राम कथा सुनाया। और जब राम कथा सुनाया तो सीता माता को होप, आशा मिली कि अरे राम का कोई भक्त आया है। और सीता उस समय सुसाइड करने के लिए जा रही थी, तो हनुमान जी ने सीता को बचाया और फिर सीता के सामने आके और प्रभु की मुद्रिका दी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जब दिलान दे गए अचरज नाही। तो वो जो मुद्रिका अपने अपने पास राम की लेके आए थे वो सीता को दिया, और फिर सीता को भगवान राम के बारे में बताया और सीता को कहा कि चलो मैं तुमको लेके जाता हूँ। लेकिन सीता ने कहा कि नहीं, ये जो श्रेय है ये भगवान राम को मिलना चाहिए, तो तुम जाओ 30 दिन का समय देती हूँ, राम को कहो आके रावण को मार के मुझे लेके चले जाए। तो हनुमान वापस उड़ते उड़ते गए और उड़ते जाके और भगवान रामचंद्र जी के सामने जाके और वहां पर उनसे मिलके, तब तक राम खबर मिल गई थी। तो सीता का उन्होंने संदेश दिया और फिर राम को कहा कि चलो अभी हम लोग चढ़ाई करते हैं। और जाके फिर उन्होंने क्या किया, उसके बीच में उन्होंने लंका भी जला दी और बहुत कुछ किया, बहुत राक्षसों को मारा। और बंदर को संस्कृत में हरि कहते हैं। तो जब हनुमान उत्पात मचाना शुरू किए कहाँ पे, अशोक वाटिका में, क्योंकि सीता माता से मिलने के बाद बोले माता बहुत भूख लगी है, लंबी यात्रा करके आया हूँ। तो सीता माता ने कहा खा लो फ्रूट्स फल वगैरह खा लो। तो खाने लगे तो इतना उत्पात मचा रहे थे कि सारी की सारी राक्षसियाँ जो थी वो कहने लगी कि हरि आया है ना, क्योंकि हरि का एक मतलब होता है जो सब कुछ हर लेता है। तो सिंह को भी हरि बोलते हैं संस्कृत में और बंदर को भी हरि बोलते हैं। तो वो चिल्लाने लगी हरि 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 ऐसा करके। और फिर हनुमान जी वापस से गए, भगवान रामचंद्र जी को बुलाया, भगवान रामचंद्र जी आए, लंका पे चढ़ाई की, रावण को मारा और रावण को मार के सीता को वापस से अयोध्या में लेके गए और वहां पर वापस से अपने अयोध्या में वो राजा रामचंद्र जी बने। और जब कुछ इतना सब कुछ हो रहा था तो वो सीता माता हनुमान जी को कुछ एक गिफ्ट देना चाहती थी। तो सोची क्या दूं क्या दूं। तो एक जमींदार था जिसने 9 लाख हार ला के सीता माता को दिया था। और वो सीता ने क्या किया कि वो जो हार सबसे इम्पोर्टेंट हार था वो हार ला के हनुमान जी को दिया, बोला तुमने इतनी हमारी सहायता की है, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। तो हनुमान जी ने क्या किया, उस हार को लिया और उस हार में जितने हीरे लगे थे सब हीरे को तोड़ने लगे, कटाक कटाक कटाक, और फेंकने लगे। और जैसे जैसे हीरा तोड़ रहा था वो जमींदार का करे हीरे तोड़ के फेंक रहा है, ये तो बंदर ही ठहरा आखिर। तो उसको पूछा कि ये क्या कर रहा है, इतना 9 लाख हार वो भी सीता माता ने दिया है उसको तो तोड़ के फेंक रहा है। कटोरा नहीं मत देख रहा हूँ, उसके अंदर राम किधर है? ये हीरे में राम नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, तो इसके लिए मैं फेंक रहा हूँ। जिधर राम नहीं है वहां मेरा काम नहीं है। तो फेंक रहा हूँ, तो उसको बड़ा गुस्सा आया, बोला तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे तेरे पास राम है। तो बोला हाँ है। तो बोला बता। तो हनुमान ने क्या किया, अपने छाती को अपने सीने को चीर दिया, और चीर के और अपनी छाती के अंदर अपने हृदय में भगवान राम सीता को प्रकट किया। बोलो श्री सियावर रामचंद्र की, हनुमान की। एक राम और सीता यहाँ पर सिंहासन पर बैठे थे, और दूसरे राम और सीता जो हनुमान के हृदय में थे, और वो जो है वो पूरी दुनिया को उन्होंने दिखाया और कहा कि यस हनुमान के छाती में उनके हृदय के अंदर हमेशा राम रहते हैं। राम राम प्यारे तुम रखवारे, जो राम जो है पूरा उनके भक्त भी है। तो हनुमान जी एक ऐसे महान भक्त है कि भगवान रामचंद्र जी ने फिर अल्टीमेटली बोला कि मैं तुमको और कुछ नहीं दे सकता तो एक आलिंगन देता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, हनुमान जी का आलिंगन किया, और जब अयोध्या के अंदर जब पंगत लगी और सब प्रसाद लेने के लिए बैठे थे, कथा बहुत लंबी है मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, तो जब वो खाने के लिए बैठे तो केले के पत्ते पे उनको खिलाया जा रहा था, लेकिन ऐसा तो पता चला लास्ट में एक केले का पत्ता कम पड़ गया और दो लोग बच गए, राम और हनुमान। तो रामचंद्र जी ने हनुमान को कहा कि तुम मेरे साथ बैठ के प्रसाद ले। तो हनुमान ने कहा कि मैं तो आपका दास हूँ, मैं आपके साथ तो प्रसाद नहीं ले सकता। तो बोला नहीं तू दास है, लेकिन अभी एक ही केले का पत्ता बचा है, इधर आ जा, एक काम करता हूँ इस केले के बीच में मैं एक लाइन खींचता हूँ, उस तरफ तू खा इस तरफ मैं खाता हूँ। तो पहले केले के पत्ते पे बीच में लाइन नहीं थी, आप लोग देखते ना केले के पत्ते बीच में, तो वो लाइन किसने खींची है, रामचंद्र जी ने खींची है कि नहीं। और तब तो जब भी आप अगर केले के पत्ते पे भी खाओ तो याद आना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी जो कि दास्य भाव में है उनको साख्य भाव में लेके आए और उनको अपना सखा भी बनाया। लेकिन उनको उन्होंने ठीक भी किया कि जब हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे और एक छोटी सी गिलहरी बीच में आ रही थी, तो हनुमान ने कहा हट। तो रामचंद्र जी ने कहा कि तू तेरे हिसाब से काम कर रहा है, वो मेरे हिसाब से काम कर रही है। तो भगवान की सेवा में हर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है, चाहे वो हनुमान जी हो चाहे गिलहरी हो। फिर भगवान राम ने उस गिलहरी को लेके और उसके ऊपर ऐसे हाथ किया, तो गिलहरी के पीठ पे जो तीन रेखाएं हैं वो भगवान रामचंद्र जी का वरद हस्त है, वो हाथ की रेखाएं हैं, उस समय से गिलहरी के ऊपर वो रेखा आ गई। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी अपने भक्तों के द्वारा और विशेष रूप से हनुमान जी के द्वारा बहुत बताना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने गरुड़ का, सुदर्शन का, सत्यभामा का, सबका जो गर्व था वो भी खंडन किया, तो हनुमान जी बहुत विशेष भक्त है। और रामचंद्र जी के साथ में उनकी बहुत सारी लीलाएं हुई है, बहुत सारी और भी स्टोरीज है, पर हमारे पास टाइम नहीं है इसके लिए मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी का चतुराई का एक एक आपको मैं स्टोरी बताता हूँ कि हनुमान जी और एक बार नारद मुनि की मुलाकात हुई, तो नारद मुनि से हनुमान जी ने संगीत सीखा और फिर संगीत बजाने लगे, तो अपने गुरु से बहुत अच्छा संगीत बजाने लगे। तो नारद मुनि के साथ जब संगीत बजा रहे थे तो ऐसा संगीत हो रहा था कि नारद मुनि जिस शिला पर बैठे थे पत्थर पे, वो पत्थर पिघलने लगा, और जब पत्थर पिघलने लगा तो नारद मुनि की वीणा जो थी वो पत्थर के ये पिघल के नीचे फंसने लगी, और जब हनुमान ने जब गाया बंद कर दिया तो वीणा फंस गई। तो फिर नारद ने कहा कि अरे वापिस गाओ, ये वीणा निकालो। बोले नहीं, पहले तुम मेरे घर पे चलो। और भागने लगे हनुमान जी, और भागते भागते पूरे घर के अंदर नारद मुनि को भगाया, फिर आया, फिर गाना गाया और बाद में वीणा को निकाल दिया। तो नारद ने पूछा इतना भगाया क्यों मेरे को, तो बोला कि अरे आप साधु हो और आपकी चरण रज जो है वो मेरे घर में मैं लाना चाहता था। तो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। बहुत विद्या और बहुत गुण है, बहुत चतुर है हनुमान जी। तो ऐसे हनुमान जी की बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी हनुमान जी। एक लास्ट टाइम है, मुझे एक बोल सकता हूँ 2-5 मिनट। तो एक हनुमान जी का एक और आपको स्टोरी बताता हूँ कि हनुमान जी इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे कि बाकी सारे लोगों ने सोचा कि यार सारी सेवा तो हनुमान कर लेता है, हम लोगों को सेवा मिलती नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया, जैसा अभी मीटिंग चल रहा है हमारा, वैसा मीटिंग किया उन लोगों ने, बोला मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद एक रोस्टर बनाते सेवा का। तो कितनी सारी सेवा है उसका एक लिस्ट बनाया और उसके आगे सबका नाम लिख दिया। बोला सारी सेवा हम लोग बांट लेते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता सबने सेवा बांट ली, और बोला हनुमान का कोई सेवा में कहीं पर नाम भी नहीं है। तो हनुमान जी सुबह सुबह आए, तो जो सेवा करने जाते हैं तो बोलता है ये तो मेरी सेवा है,
हनुमान जी बोले यार अच्छा ठीक है तेरी सेवा तुम करो, तो कहीं सेवा नहीं मिल रही है। सीता के पास गए तो सीता को पहले ही बोला था कि देखो आपके पास आएंगे हनुमान जी उसको नोटिस बोर्ड बताना। तो बोला नोटिस देखो नोटिस। तो बोला नोटिस क्या है? बोला ये नया नोटिस है, इसके ऊपर सब सेवा लिखा हुआ है, रोस्टर है ये, और हनुमान का नाम कहीं पे नहीं है। तो हनुमान जी बड़े एकदम व्याकुल हो गए, बोले अरे मेरा नाम कैसे नहीं है? लेकिन जो भगवान की सेवा करना चाहता है वो तो सेवा से भागता नहीं है। वो जाके बिल्कुल राम के पास में खड़ा हो गया, बोला कि एक सेवा है जो तुम लोगों ने लिस्ट में लिखा नहीं है और वो सेवा मैं करूंगा। तो सबने बोला अरे कौन सी सेवा? देख सारा सेवा तो लिस्ट में हमने डाल दिया। बोला नहीं, एक सेवा तुमने नहीं डाला है। वो कौन सा सेवा है? कि जब कोई जम्हाई लेता है तो चुटकी बजाना पड़ता है, वो सेवा तुमने नहीं लिखा है। तो राम जब जम्हाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा? मैं बजाऊंगा। तो बिल्कुल राम के पास में जाके खड़े हो गए, बोला चुटकी मैं बजाऊंगा। और बिल्कुल पास में खड़े रहते हैं क्योंकि जम्हाई कभी भी आ सकती है ना, तो हमेशा राम के पास में रहते हैं। तो एक बार हनुमान का छोटा स्टोरी बताता हूँ कि राम कितना उनसे प्रेम करते हैं। एक बार कोई जाके हनुमान जी से चुगली किया, बोला तुमको पता है राम के पास एक डायरी है जिसमें सारे भक्तों का नाम लिखा है लेकिन तुम्हारा नाम नहीं है उसके अंदर। हनुमान को विश्वास नहीं हो, बोला अरे मेरा नाम कैसे नहीं, मेरा नाम तो होना चाहिए। बोले नहीं है। हनुमान जी गए देखा डायरी देखा तो कहीं उसका नाम नहीं। तो हनुमान जी को भी एक बार शॉक लगा कि अरे मेरा नाम इसमें ऐसे कैसे नहीं है। तो भगवान राम को जाके बोले, बोले प्रभु एक बात पूछूं क्या? बोले पूछो हनुमान क्या बात है? तो बोले प्रभु आपके पास वो डायरी है बाहर मैंने देखा टेबल में पड़ा था। बोला हाँ। तो बोला उसमें मेरा नाम नहीं है। तो बोला हाँ वो डायरी है उसमें मेरे सारे भक्तों का नाम है जो दिन रात सततम चिंतयन्तो माम, जो मेरा हमेशा चिंतन करते रहते हैं उनका नाम है। तो हनुमान जी घबराते हुए बोले कि मैं भी तो आपका चिंतन करता हूँ भगवान, मेरा नाम क्यों नहीं है उसके अंदर? कभी कभी एक्चुअली क्या होता है कि भक्त को भगवान के साथ यू नो लड़ाई करने की भी छूट है, और कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान जो है वो अपने भक्तों का भी सहायता लेते हैं। जैसे कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, है क्या नहीं? तो हनुमान जी बोले मेरा नाम क्यों नहीं प्रभु? तो भगवान रामचंद्र जी ने अपने हृदय के पास में से एक छोटी सी डायरी निकाली, दूसरी ओर वो हनुमान के हाथ में दी। हनुमान ने खोल के देखा छोटी सी डायरी थी, पहला नाम हनुमान का था। तो बड़े खुश हो गए, लेकिन बोले अरे प्रभु ऐसा दो दो डायरी क्यों रख के कंफ्यूज करते हो, एक डायरी क्यों नहीं है? तो बोले हनुमान ये जो बड़ी डायरी है बाहर रखी है इसमें उन भक्तों के नाम है जो 24 घंटे निरंतर मेरा नाम लेते हैं, लेकिन ये छोटी डायरी वो डायरी है इसमें उन भक्तों का नाम है जिनके बारे में निरंतर मैं सोचते रहता हूँ। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की, रामचंद्र की, प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंद। थैंक यू वेरी मच।
प्रभु की
जय,
शिला प्रभुपाद की
जय।
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा।
तो आप लोगों ने बहुत ही सुंदर इस राम कथा का और इस पावन हनुमान जयंती के अवसर पर श्री हनुमान जी का गुण कीर्तन सुना होगा। तो आप लोग सबको बहुत आनंद आया कि नहीं आया? तो आज के इस पावन हनुमान जयंती के अवसर पर आज दो महान भक्तों का भी जन्म है, जन्मदिन है। एक तो स्वयं प्रभु जी का तिथि के अनुसार उनका हनुमान जयंती का जन्मदिन है, और हमारे बीच में गौर हरि प्रभु है उनका भी जन्मदिन आज ही के दिन रहा है, और जीवन किशोर प्रभु, जीवन कृष्ण प्रभु उनका भी जन्मदिन आज है। तो हम दो दिन पहले था उनका जन्मदिन, तो इन भक्तों के जन्मदिन के अवसर पर हम उनके लिए प्रेम से एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रार्थना करेंगे।